अर्जुन ने अपनी बात साफ साफ शब्दों में उसके सामने रख दी और खामोशी हो गया। सृष्टि कुछ पल खामोशी से उसको देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आपकी यही बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इतना साफ दिल है आपका, तो आपको गलत समझने की गलती मैं भला कैसे कर सकती हूँ। जिंदगी में एक ही तो सही काम किया है मैंने, आपसे दोस्ती की, और अब ये दोस्ती मेरी आखिरी सांस तक यूं ही बनी रहेगी। और एक बात कहनी है मुझे, आप यूं निराश मत होइए। आज हालात भले ही आपके अगेंस्ट हों, पर जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अभी आप बस खुद को वक्त दीजिए और अपनी काबिलियत के दम पर एक नई शुरुआत कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अपनी मेहनत और काबिलियत से आप फिर वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे जो आज डिजर्व करते हैं। सृष्टि ने ना सिर्फ अर्जुन पर विश्वास जाहिर किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी जगाया। उसकी बातों से अर्जुन काफी हद तक शांत हो गया था और एक बार फिर मन ही मन सृष्टि और निया में तुलना कर बैठा। सृष्टि ने उसे समझा भी और समझाया भी, वहीं निया ने उससे झगड़ा किया और उसके खराब मूड को और ज्यादा खराब कर दिया। अर्जुन को खोया हुआ देखकर सृष्टि ने अब वहां से उठते हुए कहा, चलिए आज मुंबई दर्शन करते हैं, इससे आपका माइंड फ्रेश होगा और फिर दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। उसकी आवाज कानों में पड़ने पर अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आया और सृष्टि को देखा तो लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए उसे देख रही थी। अर्जुन ने हामी भरी, फिर उठते हुए बोला, चलते हैं, पर पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। अर्जुन का सवाल सुनकर सृष्टि ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने जासूस लगाए हुए हैं आपके पीछे, उन्हीं से खबर मिली और आ गई मैं आपकी जान खाने। सृष्टि ये सीरियस होने का नाटक ज्यादा देर तक ना कर सकी और अपनी बात कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। कुछ सेकंड बाद उसने गंभीरता से कहा, मजाक बहुत हुआ, चलो सच सच बताओ कि तुम्हें उस होटल का पता कैसे चला। वहां के बारे में तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। कल रात घर जाते वक्त आपकी कार को उस तरफ जाते देखा था, पर उस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कभी कभी इंसान को अकेले भी रहने देना चाहिए। तो बस फिर रात को चली गई और सुबह आसपास बने होटलों में आपके बारे में पूछा और बस थोड़ी मेहनत में आपके पास पहुंच गई। सृष्टि एक बार फिर मुस्कुरा दी, अर्जुन के लगों पर भी मुस्कान ठहर गई और दोनों घूमने निकल गए। आरवी भी अपनी सुबह के काम निपटाकर स्टूडियो के लिए निकल गई। शान नहीं था वहां और रेहान को कह दिया था कि आरवी से रिहर्सल करवाए, क्योंकि वो परफेक्शन नहीं मिला था उसे जो वो ढूंढ रहा था। आरवी सारा दिन यहां बिजी रही और शाम को घर लौट गई। आज वो सारा वक्त को चुप चुप सी रही, जबकि कईयों ने उसे सवाल जवाब किए जो उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। घर जाकर उसने खुद को अंशु में व्यस्त कर लिया। वहीं अर्जुन भी सारा दिन सृष्टि के साथ बिताकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था। शाम को वो घर पहुंचा तो अमरजीत जी हॉल में बैठे नजर आए और उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अर्जुन ने उन्हें फिर से सब शुरू करने का प्लान बताया और फिर मन बहलाने के लिए उन्हें किचन में ले गया। काम के बीच फंसे दोनों बाप बेटे को साथ बिताने को वक्त नहीं मिलता था, पर आज की सारी शाम उन्होंने साथ बिताई। पुरानी यादों को ताजा किया गया। हंसी मजाक की आवाज ऊपर बैठी निया के कानों तक भी पहुंच रही थी, पर उसने नीचे उतरने का कष्ट नहीं किया। साथ में डिनर करने के बाद काफी देर तक दोनों बाप बेटे बाहर गार्डन में टहलते रहे, फिर अर्जुन उनके रूम में उनके साथ ही सो गया। बिजनेस खोया था उन्होंने, जिसका गम अर्जुन ने अपने साथ से पूरा कर दिया। मल्होत्रा निवास में आज भी सबने शान के बिना ही डिनर किया। शान जरा देर से आया, कुछ देर सुभाष जी के पास ठहरा, फिर रूम में आया तो आरवी बेड पर बैठी अंशु के सर पर थपकी दे रही थी, जो सो गई थी। उसके कपड़े बेड पर दूसरी तरफ रखे थे। शान को देखकर भी आरवी ने अनदेखा कर दिया और चुपचाप उठकर वहां से चली गई। शान फ्रेश होकर बाहर आया तो खाना टेबल पर रखा मिला और आरवी अंशु को अपने सीने से लगाई सोती नजर आई, जो गवाह था इस बात का कि आरवी कल की वजह से उससे नाराज है, पर फिर भी अपने फर्ज निभा रही थी वो। शान ने खाना खाया और बर्तन लेकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद वापस लौटा और दूसरी तरफ जाकर लेटकर खामोशी से आरवी के उदास चेहरे को देखने लगा। शान को वो दिन याद आ गया जब आरवी उसके करीब आने की कोशिश करती, अपना प्यार जाहिर करती। इतनी बातें की थी उसने उन डेढ़ दिनों में, जितनी शादी के 7 महीनों में नहीं की थी। पर एक बार फिर वो खामोश थी और उससे दूर भी, जो शान को अच्छा तो नहीं लग रहा था पर ठीक भी था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रात कटी, अगली सुबह हुई और तब भी आरवी चुपसी उसका काम करती नजर आई। फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। आज फिर शान ठाकुर एम्पायर में रहा। 3 दिन यूं ही गुजर गए। अर्जुन और अमरजीत जी अब संभल चुके थे और दोनों अब न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि खाली बैठना दोनों को ही गवारा नहीं था। फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस था तो ज्यादा मुश्किल नहीं था फिर से एक नई शुरुआत करना। बस अभी वो थोड़े दिन काम की चिंता से दूर एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। निया और अर्जुन की बात बिल्कुल बंद थी, जबकि अर्जुन की सृष्टि से रोज बात होती थी और वो उसको हिम्मत देती थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन निया का ध्यान नहीं रखता था, उसके अंदर उसका बच्चा पल रहा था तो उसका पूरा ध्यान रखता था, उसकी हर जरूरत और ख्वाहिश पूरी होती थी। बस अर्जुन उससे जरूरत जितना ही बात करता था, उसके सोने के बाद अपने बच्चे से भी ढेर सारी बातें करता था। और उसने निश्चय किया था कि उसके इस दुनिया में आने से पहले खुद को फिर से इस काबिल बना लेगा कि उसको एक बेहतर जिंदगी दे सके। शान और आरवी के बीच शीत युद्ध अब भी जारी था। आरवी उसका ध्यान पूरा रखती पर बात नहीं कर रही थी और शान भी चुप रहता। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, जिसे कुछ वक्त निकालकर शान अंशु और सुभाष जी के साथ कुछ यादें बनाता। बाकी कोई उसे बात नहीं करते थे तो वो भी चुप रहता, आजकल वक्त पर घर आ जाया करता था। आरवी की खामोश नाराजगी को उसने दूर करने की कोशिश नहीं की और उस दिन के बाद आरवी के मन से वो बात निकल नहीं सकी। आरवी की खामोशी शान को चुभती जरूर थी, पर वो भावहीन बना रहता था। रोज शान जरा जल्दी ही घर आ जाता था, जिसकी एक वजह अंशु भी थी। एक्चुअली दो दिन से उसको सर्दी जुकाम था और कभी कभी हल्का फीवर भी आ जाता था। अब सर्दियों में बच्चों को ये सब होना आम बात थी। अंशु के लिए आरवी दो दिन से रिहर्सल के लिए भी नहीं गई थी और सारा दिन उसके साथ ही रहती थी, क्योंकि तबीयत सही ना होने की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और उसको आरवी हर पल अपने साथ चाहिए होती थी। रोज शान वक्त पर घर आता था, पर आज ऐसा नहीं हुआ। रात के 12 बज चुके थे पर शान की कोई खबर नहीं थी। शाम को ही अंशु को बुखार चढ़ गया था, डॉक्टर ने आकर दवाई दी थी। अंशु ने शान से मिलने की जिद भी की, जिस पर आरवी ने कई दिनों बाद उसको फोन किया, पर उसने कॉल आंसर नहीं किया तो आरवी ने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, पर शान तब भी नहीं आया। बड़ी मुश्किल से आरवी ने समझा बुझाकर अंशु को दवाई देकर सुलाया। दवाई की वजह से बुखार उतर गया था। कुछ पल आरवी वहीं बैठी उसके सर पर थपकी देती रही, फिर पूल साइड आ गई। सर्दी का मौसम था और रात का वक्त, उस पर वहां चलती ठंडी हवाएं सर्द वातावरण बना रही थी और इतनी सर्दी में आरवी एक शॉल उन्हें बाहर खुले में बैठी थी, पर उसको सर्दी का एहसास तक नहीं था, उसका ध्यान कहीं और ही था। शायद अपनी जिंदगी में उलझी हुई थी वो, उसको एहसास ही नहीं हुआ कि अचानक ही हल्की बूंदा बांदी होने लगी।
आरवी एकदम से होश में लौटी और तुरंत अंदर की तरफ भागी। उसने अपने कपड़ों को झाड़ा और बेड की तरफ पड़ गई। बाहर बैठे बैठे रात के 12 कब बजे उसे एहसास ही नहीं हुआ। अभी जब उसने टाइम देखा और पाया कि शान अब तक नहीं आया तो उसे आश्चर्य भी हुआ, पर फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंशु के पास लेट गई। इसके साथ ही उसको एहसास हुआ जैसे आग की लपटें उसके ऊपर से आ रही हैं। वो चौंकते हुए उठकर बैठ गई और अंशु के सर को छूकर देखा तो भट्टी जैसे तप रही थी। आरवी ने बिना एक पल गवाए उसको उठाकर दवाई दी और बाथरूम से पानी लाकर उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करने लगे। अब तो उसका एक एक सेकंड घंटों जितना भारी बीत रहा था। बार बार वो अंशु का टेम्परेचर चेक कर रही थी, पर बुखार कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था और अब वो नींद में ही कांपने भी लगी थी। आरवी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने उसको ब्लैंकेट में अच्छे से लपेट दिया। पहले तो किसी तरह पेशेंस के साथ उसके सर पर पट्टियां करते हुए बुखार उतरने का इंतजार करने लगी, पर जब आधा घंटा बीत गया पर बुखार तेज ही होता रहा तो आरवी ने तुरंत फोन उठाकर शान को फोन किया, पर अब भी उसने फोन नहीं उठाया। 5-6 बार उसने उसको फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया। डॉक्टर को फोन किया तो उनका फोन लगा ही नहीं। अब तो आरवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। रात के 1 बजने को घर में इस वक्त सब सो रहे होंगे और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शान को फोन किया था। पर अब कोई और रास्ता ना देखकर उसने अंशु को अपनी गोद में उठाते हुए अपने सीने से चिपका लिया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था क्योंकि घर वालों के साथ साथ सारे सर्वेंट भी अपने क्वार्टर में सो रहे थे। आरवी अर्पिता जी और सुयश जी के कमरे के पास चली आई और उनके रूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, बड़ी माँ, बड़े पापा, दरवाजा खोलिए। यूं ही आरवी ने कई बार दरवाजा नॉक करते हुए आवाज लगाई। पहले तो नींद में होने की वजह से दोनों नहीं उठे, पर फिर कुछ देर तक जब आवाज आती रही तो आखिर उनकी नींद खुल ही गई। इतनी रात गए आरवी के आने पर दोनों कुछ परेशान से हो गए और तुरंत ही उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुला और सामने खड़ी आरवी को देखकर दोनों स्तब्ध से रह गए। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे और बहुत ज्यादा परेशान सी लग रही थी वो। आरवी की ये अवस्था देखकर अर्पिता जी ने चिंता भरे स्वर में कहा, आरवी क्या हुआ बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? बड़ी माँ, अंशु को बहुत तेज बुखार हो गया है, मैंने दवाई दी, ठंडे पानी की पट्टियां भी की, पर बुखार आराम नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड।